चलिए फिर वर्स 50 पे चलते हैं। द ओशियन ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट्स नीड्स टू बी क्रॉस्ड। जो ये संसार है, मतलब ये जो पूरा का पूरा समुद्र है, इतना बड़ा माया जाल है, किसका? अज्ञान का। और इसको क्या बोलते हैं, अटैचमेंट्स को, आसक्ति, आसक्ति है ना, अज्ञान और आसक्ति। और ये जो हमारे डेमन्स हैं, क्या हैं? वही आसक्ति, राग और द्वेष। राग और द्वेष कहाँ पर रहते हैं? अज्ञान में रहते हैं, है ना। इनको मारना ही पड़ेगा, इनको मारना ही पड़ेगा। तो जब हम ये करते हैं, देवी की स्तुति होती है, तो उसमें यही होता है ना, जब सीमा ने भी ये कराए थे नवरात्रि पे इस बार, तो सारे जितने भी हमें राक्षस हैं जिनको मारना है, वो राक्षस कौन हैं? यही है ना, हमारे राग और द्वेष। और ये कहाँ रहते हैं? अज्ञान में ही रहते हैं। इनको मारे बिना आगे आपकी प्रगति हो ही नहीं सकती। और ये जो ओशियन और फॉरेस्ट, मतलब ये जो जंगल है और ये जो पूरा का पूरा समुद्र है इतना बड़ा, ये कहाँ है? ये मन के अंदर ही है, ये कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही है सबका सब। और ये जो दानव है वहाँ के, ये मन में ही रहते हैं और मन को ही तंग करते हैं, मन को ही परेशान करते हैं, है ना, उन्हीं से परेशान हो जाता है। दे मेक योर माइंड फियरफुल। फिर वो कहते हैं, लोग कितनी चीज़ों से डरते हैं, कितनी तरह के फोबियाज हैं। जैसे आपको हाइट से डर लगता है, क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगता है, पानी से डर लगता है, स्पाइडर्स से, और लोगों को कभी कभी तो पैनिक और एंग्जाइटी अटैक्स भी आ जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा डर है, बहुत सारे लोगों का है ही ना डर, एक्सीडेंट से डर लगता है, डेथ से डर लगता है, कुछ हो ना जाए इस चीज़ का डर लगता है, कुछ गलत ना हो जाए, बहुत सारे डर इंसान के मन में घुसे हुए हैं। तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल बताया है, शायद आप लोगों ने भी कभी इस तरह का सुना होगा, मैंने तो खुद भी देखा है कि MRI से भी बहुत लोग बहुत डरते हैं। तो एक कोई लेडी थी जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया था, तो उनको MRI के लिए लेके गए, और उन्होंने बहुत मना किया कि मुझे नहीं लेके जाओ, लेकिन सबको लगता है अरे इसमें क्या है, बहुत जगह, चले जाओ चले जाओ, तो उनको डाल दिया उसके अंदर। और 10 मिनट के बाद जो रेडियोग्राफर था, उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक से हो नहीं रहा है। जब उन्होंने बंद करके लेडी को बाहर निकाला, तो शी हैड डाइड इनसाइड द MRI मशीन। वो इतना ज़्यादा डर गई थी उसके अंदर। तो मैंने खुद ऐसा, जैसे मेरा भी एक बार हुआ था, MRI वहाँ पे थी, तो और लोग थे, तो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं उस मशीन से, और है भी थोड़ा, मतलब इट इज़ वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, मतलब इट्स रियली समथिंग डिफरेंट, बट समबडी ऑल्सो डाइड, पीपल डाई ऑल्सो। तो वो कहती हैं, वो रेडियोग्राफर ने बोला कि उसने 20 साल में पहली बार ऐसा देखा कि कोई डर के कारण किसी की डेथ हो गई, मतलब somebody succumbed to fear because of MRI, it was like so bad। तो अब वो क्या बता रही हैं कि ये जो डर है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ है ये डर, है ना, ये कहीं बाहर से आया है क्या? ये बाहर से आता है डर, है ना। अब हम सोचते क्या हैं कि MRI मशीन को मैंने देखा और उसको देख के मुझे डर लग गया, है ना, तो ये डर बाहर से आया है। लेकिन अब हमको ये पिछले चैप्टर से ही पढ़ा रहे हैं, है ना, कि बाहर नहीं है, अंदर है, यहाँ पर है। अगर तुम डर रहे हो, वो उधर नहीं है, MRI मशीन में डर नहीं है, डर तुम्हारे अंदर में ही है। तो जब तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि सब तुम्हारे अंदर है, ये डर भी तुम्हारे अंदर है, ये डर का दानव तुम्हारे ही अंदर है, तो इसको मारना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ये सब हमें बताया जा रहा है ना, हम इसको मार सकते हैं। अगर बाहर है तो कहाँ ढूंढेंगे उसे, लेकिन अंदर है तो हम उसे मार सकते हैं ना। लेकिन अब फिर वो एक और देखो, ये चीज़ है कि जब किसी दानव से डर लगता है, वो तो समझ में आता है, उसको तो आप मार भी सकते हो, चलो आपको समझ में आएगा। लेकिन क्या तुमको पता है कि आसक्ति भी एक दानव है, मोह और ममता भी दानव है? यहाँ पे इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया है, है ना। पहले तो बोला है कि डर का दानव तुम्हारे अंदर है, तुम उसको मार सकते हो। दूसरा है कि डर के दानव को तो पहचानना आसान है, लेकिन तुमको पता है मोह और ममता का दानव कितना मुश्किल है पहचानना? वो भी वहीं बैठा हुआ है उसके अंदर, है ना। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो पोता है, सबको वो अपने बेटे से ज़्यादा अच्छा लगता है, पोते में ज़्यादा प्यार होता है। ये लगता है ज़्यादातर कि अच्छा हमारे बच्चों ने तो मेरी कभी नहीं सुनी, मेरे बेटे ने तो नहीं सुनी, शायद पोता सुन लेगा। तो बहुत ज़्यादा जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं बहुत अफेक्शन देते हैं ग्रैंड चाइल्ड को, है ना। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, वो बता रही हैं कि इतना ज़्यादा बच्चे से प्यार होता है कि सारा टाइम अपने वो पोते को लेके ही घूमते रहेंगे, उसकी फ़ोटो लेके चलेंगे, उसको ही हमेशा रात को कि बिस्तर में सो तो गया है क्या है, मतलब उसके पीछे पीछे पीछे। ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, आपको बच्चों के लिए हो सकता है, आपके काम के लिए हो सकता है, कुछ भी होगा जो भी है अटैचमेंट। तो शंकराचार्य यहाँ बोल रहे हैं कि तुमको जो लग रहा है, तुमको इतना प्रेम है अपने बच्चे से या अपने पोता पोती से या दोता दोती से, ये भी एक दानव है, ये जान लो। देखो अब फिर से आपको एक, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर कुछ भी आपको बताया नहीं जाता, अगर आप ध्यान से देखोगे आत्मबोध में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा, जो आप जानते हैं उसको तोड़ा जा रहा है। याद है हम लोग बात कर रहे थे कि ये तो हमें और ज्ञान मिल रहा है, कुछ ज्ञान नहीं दे रहे अगर आप ध्यान से देखोगे। क्या ये आपको ज्ञान दिया जा रहा है कि पोते से अटैचमेंट मत करो, क्योंकि आपको अटैचमेंट है, उसको तोड़ रहे हैं वो यहाँ पे, हर चीज़ को तोड़ा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उल्टा चल रहा है, एकदम उल्टा। अभी कोई भी जो इस पाथ पर नहीं है, जो नहीं समझता है, वो तो गुस्सा हो जाएगा ये सब सुन के, नहीं, उसको लगेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। आपने देखा है, मतलब ज़्यादातर 95% लोगों को तो ऑब्वियसली फैमिली में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है कि नहीं, हर चीज़ उनके लिए, सब कुछ उनके हिसाब से करना है, क्या करना है, तो नॉर्मल वैसा ही है। हाँ, आप उसको क्या उसमें कोई बुराई है, नहीं कोई बुराई नहीं है, आप वो चुन लीजिए पूरा, लेकिन फिर क्या तैयार रहिए कि दुख सुख आते ही रहेंगे। जब तक आप आसक्ति रखोगे, जब तक आप ये अटैचमेंट्स रखोगे, ये मानोगे ये मेरा परिवार है, इन्हीं के हिसाब से मुझे सब करना है, इन्हीं के लिए सब कुछ करना है, तो बस फिर आप तैयार रहिए कि आगे दुख भी आएंगे, सफरिंग भी आएगी, क्योंकि वो जा ही नहीं सकती, वो एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। अगर अटैचमेंट है तो एक्सपेक्टेशन होनी ही होनी है, और जहाँ एक्सपेक्टेशन होगी वहाँ फ्रस्ट्रेशन होनी ही होनी है। दे ऑल आर टुगेदर, इट इज़ वन पैकेज। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये दे दो लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, इट इज़ वन पैकेज, ठीक है ना। यही वो यहाँ पर बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं, आप बोलते हो कि मैं इस इंसान के बिना तो रह ही नहीं सकती, है ना, आई कांट लिव विदाउट दिस पर्सन और दिस ऑब्जेक्ट। दिस फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू लिव विदाउट, जैसे ही आप बोलते हो कि इसके बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे वो आपका प्रेमी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, पोता पोती हो, भाई बहन हो, आपका घर हो, आपका पैसा हो, ये क्या हो गया, ये आसक्ति हो गई, ये राग हो गया। और यहाँ पे तो लोग अपने स्टेटस से भी चिपक जाते हैं, है ना, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, ये भी एक अटैचमेंट हो जाती है, या मैं सोसाइटी का क्या होता है वो जो अकाउंटेंट, मतलब सारा जो पैसे वाला देखने का एक होता है ना, किसका होता है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों में भी लोग चिपक जाते हैं कि आपको एक साल के लिए सोसाइटी का ट्रेजरर बनाया है ना, वो भी आपको, उससे भी अटैचमेंट हो जाता है कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ। तो ये जितनी भी आसक्तियाँ हैं वो यहाँ पे हमें अभी से वॉर्न कर रहे हैं, चाहे हमें बुरा लगेगा ये सुन के, क्यों, क्योंकि हमें संसार ने ऐसे ही बड़ा किया है, संसार ने ऐसा ही बनाया है ना, लेकिन वो हमें वॉर्न कर रहे हैं कि संभल जाओ, ये सब दानव हैं, सिर्फ तुम्हारा डर दानव नहीं है, ये भी दानव है। और फिर अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे, क्योंकि मोह है, क्योंकि आसक्ति है, इसीलिए दूसरा दानव पैदा होता है, इस दानव से दूसरा दानव पैदा होता है, पहले मोह आता है। अब देखो, डरते हम क्यों हैं, किसके लिए डरते हैं, यही ना, हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमारे फैमिली वालों को कुछ हो ना जाए, हमारे घर को कुछ ना हो जाए, हमारे पैसे को कुछ ना हो जाए, तो आसक्ति है, इसीलिए तो डर है ना कि उनको कुछ हो ना जाए। अगर आसक्ति ही नहीं होगी तो डर कैसे होगा, है ना, ये सबसे, ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। यस, तो अटैचमेंट थोड़ा सा हमेशा रहता है, जब तक ये शरीर है और मन है ना, अटैचमेंट नहीं जाएगा, वो रहेगा। पर बिल्कुल सही जैसे विदुषा ने बोला, सफरिंग जो होती है कि हम उस चीज़ को रिपीट ही करते रहते हैं ना, माइंड में वो चलता ही रहता है, ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ। एटलीस्ट यू कम आउट ऑफ दैट, यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये ऐसा ही है, है ना। लेकिन ये बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, जब आप अपने आप को, जैसे वो बार बार ये बता रहे हैं कि जब आप खुद को देखते हो कि मैं आत्मन हूँ, व्हेन यू सी यू आर द आत्मन, देन यू ऑल्सो रियलाइज दैट एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो आत्मन। योर सन इज ऑल्सो आत्मन, योर हस्बैंड इज ऑल्सो आत्मन, योर ग्रैंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो आत्मन, एवरी वन इज आत्मन। एंड वॉट डज दैट मीन? दैट आत्मन इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज। उसका ना कभी बर्थ होता है, ना डेथ होता है, कुछ होता ही नहीं है। तो वो चिंता ही खत्म, वो डर वहाँ पे बहुत बहुत कम हो जाता है। यू रियलाइज दैट एंड उससे सफरिंग खत्म हो जाती है। पेन यस, थोड़ा बहुत, क्यों? एक तो कंडीशनिंग भी इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए तो जो हम पिछली बार हम लोगों ने चैप्टर में करा था ना, वो कह रहे थे कि सन्यासी जो है, जब कोई सन्यास लेता है, वो इसीलिए एक रीज़न होता है कि क्यों अटैचमेंट्स पे पड़ो। आप शादी करोगे, बच्चे करोगे, एक तो आप अज्ञानी पैदा कर रहे हो, ऊपर से आप अटैचमेंट्स में घुसोगे ही ना, हो ही जाएगा अटैचमेंट, तो दूर रहो। और एक और होता था पहले तो सन्यासियों को, अगर आप देखिए, यह था कि उनको 3 दिन से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो घूमते ही रहते थे, ऑलवेज ट्रैवलिंग। सिर्फ जैसे कोई रेनी सीजन वगैरह में होता था, उनको 2-3 महीने अलाउड होता था कि आप एक जगह पे रह जाओ, नहीं तो 3 दिन बस। क्यों? उन्होंने बोला 3 दिन से ज़्यादा रुकोगे तो आसक्ति शुरू हो जाएगी वहाँ पे। क्यों आसक्ति शुरू हो जाएगी? क्योंकि मन का है ही ऐसा, ये मन का स्वभाव है कि वो अटैचमेंट कर लेता है ना। बॉडी और मन जहाँ भी होंगे वो कर ही लेंगे, तो इसलिए टिको ही मत वहाँ पे। इसीलिए सन्यास की इम्पोर्टेंस थी। एक और चीज़ देखिए, हमारे यहाँ जो गुरुकुल का सिस्टम था पहले, या जो पहले आश्रम सिस्टम था, पहले 25 वर्ष ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर सन्यास, और उसके बाद वानप्रस्थ, और फिर सन्यास, ये 4 आश्रम होते थे। तो जैसे ही आप 6-8 वर्ष के होते थे, बच्चा जो होता था उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो वहीं पे जो मदर का अटैचमेंट है, और आपको शुरू से अगर आपकी ट्रेनिंग ऐसी होगी कि आपका बच्चा 6 साल में चला जाएगा, या आपकी ट्रेनिंग माइंड की ऐसी होगी कि हाँ ये बच्चा आपके थ्रू आया है, आपने जन्म दिया है, लेकिन आपका कोई हक नहीं है इसके ऊपर, बचपन से ये ट्रेनिंग होगी माइंड की, तो माइंड उतनी आसक्ति नहीं करता था। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। देखो, हमारे यहाँ पे जैसे मोनोगैमी है ना, मतलब 1 हस्बैंड 1 वाइफ, करेक्ट, एक ही स्पाउस है। अब शुरू से हमारे दिमाग में, जब से हम पैदा हुए, हम यही देख रहे हैं, हमने जितने लोगों को देखा है मोनोगैमस रिलेशनशिप्स देखे हैं, तो ऑब्वियसली अभी जब हमारा है तो हम भी वही एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। अभी अगर सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे हस्बैंड की 3 बीवियाँ और आ जाएँ, तो हम क्या एक्सेप्ट करेंगे? हमारा माइंड एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा उस चीज़ को, है ना, कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उन लोगों ने शुरू से दे हैव एक्सेप्टेड दिस। क्यों? क्योंकि बचपन से वही ट्रेनिंग है, बचपन से उन्होंने यही देखा है कि 4 बीवी, मतलब यू आर वन ऑफ द वाइफ्स, यू आर नॉट द ओनली वाइफ, दे आर यूज टू इट। अब एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे हम में से कईयों के यहाँ पे एक एक बच्चा है ना। अब जो एक बच्चा है उसको आदत है, उसको पता है द पेरेंट्स आर ओनली फॉर द चाइल्ड, उसको अब आदत है, यही चीज़ है ना, जैसे मोनोगैमस रिलेशनशिप हो गया ना, ये भी एक तरह से एक बच्चा है। और जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको शेयरिंग की आदत है बचपन से, पेरेंट्स को शेयर करने की, हर चीज़ शेयर करने की। तो ये आपकी माइंड की ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है, सारा कुछ माइंड के अंदर है। तो अगर आपके माइंड की ट्रेनिंग नहीं हुई है इन चीज़ों में, हमें क्यों दिक्कत आ रही है, हमें ये शंकराचार्य जी के वचन क्यों डिफ़िकल्ट लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे माइंड की ट्रेनिंग वो नहीं हुई है। हमारे माइंड की ट्रेनिंग हुई है ये तुम्हारा हस्बैंड है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे फैमिली है, इनके साथ तुम्हें रहना है, यही है, बचपन से घोट घोट के हमने वही पिया हुआ है, इसलिए हमें इसमें दिक्कत आ रही है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है।
इंडिया में ही पहले, मतलब हिंदुस्तान में भी, Once upon a time, राजाओं की कितनी रानियां होती थी ना।
हाँ, बिल्कुल। और सब एक्सेप्ट करते थे, सब देखो कितने भी, अब दशरथ को हम जो मानते हैं कोई खराब थोड़ी मानते हैं, अच्छा ही राजा मानते हैं ना। तो ऐसा ही होता था, कृष्ण की तो 16,800 रानियां थी है ना। तो ये एक्सेप्टेड था, लेकिन क्या हम एक्सेप्ट, आज हमारा कल को माइंड एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइंड की ट्रेनिंग ही नहीं हुई है उस चीज के लिए। तो वो बता रही थी ना कि लोग अपनी पावर को भी अटैच हो जाते हैं, तो उन्होंने फिर एक एग्जांपल दिया कि वहाँ पे गन्नौर में कुछ प्रोग्राम हुआ होगा, वहाँ पे किसी ऑफिशियल को इन लोगों ने बुलाया होगा, और उसके बाद देखा कि वो तो चला गया गुस्सा होके, क्यों उसको किसी ने कुर्सी नहीं दी, किसी ने उसको पूछा नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस के वो आए हैं, भाई आप सत्संग में आए हो, जैसे बाकी लोगों को ट्रीट किया गया, दरी पे बिठा दिया होगा। और फिर उसने बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया आश्रम के लिए। कुछ होता होगा ना, कुछ काम, ऑब्वियसली जब भी आप कुछ काम करते हो फिर ऑफिशियल उन चीज़ें तो हो ही जाती हैं। तो उसने बोला कि आई हैव बिन डिसरिस्पेक्टेड, मुझे आम लोगों के साथ कैसे बिठा दिया आप लोगों ने। उन्होंने कहा कि उसने बहुत प्रॉब्लम्स की, लेकिन वो जिनको रिपोर्ट करता था वो थोड़े सेंसिबल थे, तो उनकी वजह से सब ठीक ठाक से हो गया। तो कहती है मुझे तो पता भी नहीं था तब तक कि अरे ये कोई ऑफिशियल था या इनको कुछ इंपॉर्टेंस देनी होती है। फिर वो कह रही है अगर मुझे पता भी होता ये ऑफिशियल है इसको इंपॉर्टेंस देनी है मैं तो तब भी ना देती, है ना। तो गुरु उनको तो कुछ लेना देना नहीं है, आपको जो करना है करो, आपको कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। क्या कहते हैं वो, एवर्जन इज द ट्विन ऑफ अटैचमेंट। जब हमें आसक्ति होती है, जब हमें बहुत अटैचमेंट होता है, उसकी वजह से ही हमें घृणा भी होती है, एवर्जन जो हम बोलते हैं ना, हम अवॉइड करना चाहते हैं, हम नहीं रहना चाहते इसके साथ। एक है कि हम इसके साथ, इसके बिना नहीं रह सकते, और दूसरा क्या होता है, हम इसके साथ नहीं रह सकते, वो भी तो उसी का ही उल्टा है ना। सो दे आर गोइंग टुगेदर, एवर्जन एंड अटैचमेंट, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो फिर उन्होंने एक और स्टोरी बताई है कि कुछ दो फ्रेंड्स होंगे जो आश्रम इकट्ठे आते थे गुरु माँ के पास, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी लड़ाई हो गई, दोनों दुश्मन हो गए, तो एक ने आना बंद कर दिया। उसने बोला कि क्योंकि ये जाता है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, मतलब या तो ये जाएगा या मैं जाऊँगा आश्रम में। तो कह रही है कि मतलब गुरु से भी वो नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा आपके अंदर वो आ जाता है घृणा या एवर्जन कि गुरु भी मैटर नहीं करता वहाँ पे, कितना फिकल वो है। तो अब शंकराचार्य कहना क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि जो योगी है वो डेमन्स किनको करता है, स्लेज द डेमन्स ऑफ फियर अटैचमेंट अवर्जन एंड क्रॉसेस द ओशन ऑफ इग्नोरेंस। तो आपको ये जितने भी राग द्वेष डर के जितने भी ये सारे के सारे आपके दानव हैं उन सबको मार के ही आप आगे बढ़ सकते हो। डज हिज माइंड ब्रिम्स विद ट्रैंक्विलिटी एंड ही रिवेल्स इन हिज ओन सेल्फ। तो जब हम बार बार बात करते हैं कि आपको जो सेल्फ का दर्शन करना है, जो आत्मदर्शन, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, उसके बीच में ये डेमन्स भी आए पड़े हैं, है ना। अगर वो मिरर है उसके आगे कुछ भी रखा हुआ है तो ये जो चीज़ें हैं इनको हटाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो एक बार जब इनको आप हटा लेते हो तो फिर आपको आत्मदर्शन हो जाता है, और ऐसे योगी को बोलते हैं आत्मारामी। आत्माराम आपने नाम सुना होगा, बड़ा कॉमन नाम है ना आत्माराम। उसका मतलब उन्होंने बताया, आत्मारामी का मतलब होता है द वन हु हैज़ रियलाइज्ड दैट द आत्मन इट्सेल्फ इज राम, कि मेरी आत्मा ही राम है, राम कोई अलग नहीं है, राम अयोध्या में नहीं बैठा हुआ है कोई, मेरी आत्मा ही राम है। जो इसको जान जाए उसका नाम होता था आत्माराम। फिर उन्होंने ना रामायण का बहुत अच्छा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि देखो सीता, हम सबको पता है कि सीता को चुरा लिया गया था राम से, है ना, और फिर राम गए उसको बचाने। अब वो कह रही हैं यहाँ पे देखो राम कौन है और सीता कौन है। राम जो है वो है शिष्य, राम शिष्य है, सीकर है, जिसकी सीता गुम हो गई है। सीता का क्या मतलब है, जिसकी शांति, जिसका चैन, जिसका सुख खो गया है। ओके, राम की सीता खो गई है। फिर वो जाता है अपनी सीता को ढूंढने, और रास्ते में उसको किससे हेल्प मिलती है, हनुमान से, सुग्रीव से और जामवंत से। ये कौन है, ये आपकी साधनाएं हैं, दीज आर योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। फिर राम द सीकर डज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, दीज प्रैक्टिसेस आर योर हेल्पर्स। तो हनुमान क्या है, हनुमान रिप्रेजेंट करते हैं ज्ञान को, हनुमान है ज्ञान, और जामवंत है भक्ति, और सुग्रीव है विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिव विजडम विवेक। और फिर राम को एक पूरा ओशियन है ना, समुद्र पार करके जाना है सीता को लेने के लिए। वो समुद्र किस चीज़ का है? वो है अज्ञान का समुद्र, है ना, अज्ञान का है। और इस ब्रिज यहाँ पे कौन क्रॉस करेगा, कैसे क्रॉस करेंगे? वो करेंगे ब्रह्म ज्ञान से। वो है ब्रिज, जो ब्रिज बना है जिससे उस अज्ञान के सागर को पार किया जाएगा, वो है ब्रह्म ज्ञान, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तब जो राम है वो लंका पहुंचकर अपनी सीता को बचा सकते हैं। तो जो सीकर है, जो शिष्य है, उसके लिए अज्ञान है लंका, और रावण कौन है? रावण है आपकी ईगो, आपका अहंकार, आपका मैं, वो है रावण। और उसके 10 सर होते हैं, है ना, हमें पता ही है। तो एक को काटो तो बाकी 9 तैयार, एक को काटो सब तैयार रहते हैं, एक को मारो दूसरा तैयार। ईगो को मारना बहुत सबसे मुश्किल काम होता है। तो अनलेस यू किल योर ओन ईगो यू विल नॉट अटेन सीता, दैट इज टोटल पीस ऑफ माइंड। सीता इज टोटल पीस ऑफ माइंड। फिर जब रावण को मारकर राम अयोध्या आते हैं अपनी सीता को लेकर, और अयोध्या का मतलब है वो जगह जहाँ पर अब कोई लड़ाई नहीं है, जहाँ पर कोई वॉर नहीं है, जहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब आपका अपना ही सेल्फ है ना, वो जगह वो कौन सी होगी? वही आत्मन ना। एक बार सीता अगर राम को मिल गई तो अयोध्या वहीं पे इस्टेब्लिश हो गई, है ना, क्योंकि आप आत्मन में आ गए। अपने आत्मन में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। योर वेरी ओन हार्ट इज दिस अयोध्या। अब आगे इन्होंने बहुत मज़ेदार चीज़ बताई है, ये तो सबको समझ में आ गई होगी, राम सीता की कहानी तो है ना, बहुत ईजी है। आगे वो कहती हैं, और दुख की बात ये है, तुम ऐसे राम हो जिसको ये भी नहीं पता कि उसकी सीता गुम हो गई है। कहते तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारी सीता गुम है। ढूंढोगे तो तब ना, जब पहले पता पड़ेगा, तुम्हें तो इतनी भी खबर नहीं है, है ना, और तुम तो कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हो सीता को ढूंढने का, और ना तुम हनुमान और सुग्रीव से कोई हेल्प ले रहे हो, ना तुम ब्रिज बना रहे हो ब्रह्म ज्ञान का कि मैं जाके अपनी सीता को लेकर आऊं, और ना तुम तो ऐसे राम हो जो अपने दानवों को, डेमन्स को, फियर अटैचमेंट अवर्जन को भी मारने को तैयार नहीं हो। कैसे राम हो तुम? है ना, बल्कि तुम तो ऐसे राम हो जो रावण को ही बढ़ाए, रावण को ही खिलाए जा रहा है बैठ के। है कि नहीं? अहंकार को ही तो दे रहे हैं ना, आई हैव सो मच मनी, आई हैव 5 बिग कार्स, आई हैव अ बिग हाउस, माई सन वर्क्स इन दिस कंपनी, आई होल्ड इम्पॉर्टेंट पोजिशन। है कि नहीं? सो मेनी पीपल रिस्पेक्ट मी। अभी तो हो सकता है फेसबुक पे आई हैव 1500 लाइक्स, ट्विटर पे आई हैव 2000 फॉलोअर्स। है कि नहीं? आई एम सो पावरफुल। तो तुम तो रावण को ही बढ़ाने में लगे हुए, वो ये बोल रही है। द ड्रामा ऑफ योर लाइफ इज कम्प्लीटली एंटीथेटिकल टू रामायण, है ना, तुम्हारी जिंदगी तो रामायण से उल्टी जा रही है। तो वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा रामायण पढ़ने का, ऐसे ही पढ़े जाते हो रामायण जब उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो, है ना, अपनी ज़िंदगी में उसको उतार ही नहीं रहे हो। क्या तुम्हारा माइंड एक अयोध्या है? ज़रा जांच के देखो, क्या मन अयोध्या है? क्या तुम्हारे दानव, तुम्हारे डेमन्स स्ले हो चुके हैं? है ना, रामायण पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन फ़ायदा तभी है अगर तुम उसमें थोड़ा और डीप झांको, उसको झांको। और एक बार मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, असल में रामायण का जो मेन टीचिंग है वो है योग वशिष्ठ में। जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास में थे, उस समय वशिष्ठ जी ने उन्हें ज्ञान दिया था। वो जो ज्ञान दिया था, उस किताब का नाम है योग वशिष्ठ, और वो कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ज्ञान ही है, वही यही ज्ञान है। वही जब राम, देखो जब राम भी मनुष्य बन के आए, अवतार बन के आए, आप लोगों को बताया था ना कि एक होता है आरोहण और एक होता है अवतरण। आरोहण का मतलब है कि आप ऊपर जा रहे हैं, और अवतरण का मतलब है जो ऊपर है वो नीचे आ रहा है। तो वो जो एनर्जी, जो ऊर्जा एकदम ऊपर है ना, विष्णु, वो जब अवतार लेके आ रहे हैं, मतलब वो नीचे आ रहे हैं, खुद को नीचे कर रहे हैं अपने आप को इस संसार में आने के लिए, तो जब वो मनुष्य रूप में आते हैं, चाहे वो राम बन के आए चाहे वो कृष्ण बन के आए, उन्हें भी गुरु लगते हैं वापस से ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि ये शरीर धारण करते ही आप में अज्ञान स्थापित हो जाता है। इस शरीर की ही ऐसी माया है, आप में अज्ञान आना ही आना है। तो इसलिए भगवान राम को वशिष्ठ जी ने ज्ञान दिया था, उस किताब का नाम है योग वशिष्ठ। तो हम तो रामायण की कहानी सुन लेते हैं, उसके ऊपर यू नो बड़े खुश हो जाते हैं, बस स्टोरी सुनने में मज़ा है, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो कहती हैं भगवान राम तो अपनी पूरी ज़िंदगी एक के बाद एक राक्षस को मारते ही आ रहे थे, है ना, कितने सारे, बचपन से ही शुरू हो गया था, जब वो छोटे थे तभी तो ले गए थे उनको जंगल में राक्षसों को मारने के लिए। और राम ने बहुत सारी साधना की थी, राम ने भी बहुत साधना की थी। सो वी हैव वन राम हु रेस्क्यूज हिज सीता एंड अनदर राम दैट इज़ यू हु डजंट इवन नो दैट हिज सीता इज़ लॉस्ट। What a striking contrast! Awaken Ram, awaken! वो सबको जगा रही है, बोल रही है राम जागो, उठो, सोए हुए हो, सीता गुम हो गई है तुम्हारी, जाओ ढूंढो, है ना। वो राम बनो जो रावण को मारता है, वो राम मत बनो जो रावण को बढ़ावा देता है। रावण को बढ़ावा देना बंद करो, मारो उसको। इतना यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी वी विल डिस्कस।